ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं वदिरे नष्टप्राय सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवद्योत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अने। गुरु बिन जग में जो रहे इनके बड़े अभाग, तिनका संग ना कीजिए कीजिए ताको त्याग। हरे कृष्णा। वैष्णव लोग कहते हैं कि जगत में अगर गुरु नहीं मिले तो बड़ा अभाग है हमारा। वो इसलिए अभाग है कि मनुष्य जीवन भगवत भक्ति करने के लिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए मिला था, और वो भगवत भक्ति हमको गुरु के माध्यम से, महान वैष्णव के माध्यम से मिलती है। अगर वही नहीं मिले जीवन में तो बहुत बड़ा अभाग है हमारा जीवन में। और ऐसे किसी व्यक्ति का संग करते हुए भी व्यक्ति को डरना चाहिए, सावधान रहना चाहिए कि कहीं उसके प्रभाव में भगवत भक्ति से हम दूर तो नहीं चले जाएंगे। इसलिए कहते संसार में एक विषयी व्यक्ति होता है ना, उसके संगति में व्यक्ति को भी विषय प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार गुरु विमुख या भगवत विमुख अगर कोई संसार में व्यक्ति है, उसका संग करने से भी जीव भगवान के विमुख हो जाता है। स्वयं भगवान कृष्ण का एक पुत्र हुआ था भौम, जो भूमि से उत्पन्न हुआ था। राक्षसों की संगति में पड़कर वो भौमासुर बन गया। तो ऐसी कुसंगति है ना, वो अच्छे भले व्यक्ति को भी बिगाड़ देती है। इसलिए वैष्णव लोग समझाते हैं भगवत भक्ति के विमुख व्यक्ति हो या संतों के गुरुजनों के विमुख हो, ऐसे व्यक्ति का कहते संग नहीं करना चाहिए। उससे जीवन का जो मूलभूत उद्देश्य ना वही खत्म हो जाएगा। हम यहाँ पुरुषोत्तम मास में हरि भक्तों की कथा श्रवण करने का प्रयास करते हैं। क्या लाभ होता है इससे? ये वैष्णव तो पूर्व में हो चुके हैं, अभी नहीं है, शरीर से तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनके गुणों का संग करने से आज भी उनकी कृपा व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। इसलिए महान वैष्णव या गुरुजनों का संग उनकी लीलाओं के माध्यम से भी किया जा सकता है। तो आज हम भगवान के महान भक्त ज्ञानदेव जी महाराज और त्रिलोचन जी महाराज, दो भक्तों की कथा सुनेंगे। ज्ञानदेव जी महाराष्ट्र में हुए थे, सब जानते होंगे, उनके बारे में सुना होगा कभी। नामदेव जी, तुकाराम जी, ये सब संत महाराष्ट्र में हुए थे। ज्ञानदेव जी को सामान्य प्रकृति के व्यक्ति नहीं थे, उनकी जन्म की लीला भी बड़ी अद्भुत थी। ज्ञानदेव के पिताजी थे विठल पंत जी। कोई संतान नहीं थी, धर्म पत्नी को छोड़कर रामानंदाचार्य उस समय जो भारत यात्रा कर रहे थे, रामानंदाचार्य जी के संपर्क में आए और हरि भक्ति इतनी अच्छी लगी उनको कि हरि भक्ति के प्रभाव में रामानंदाचार्य जी से उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और उनके साथ में रह के भजन करते थे। रामानंदाचार्य देव संयोग से भ्रमण करते करते हुए पंढरपुर आए, वहां से आनंदी गए, वहां सत्संग कर रहे थे तो एक महिला ने आके उनको प्रणाम किया। उनका नाम था रुक्मणी बाई, आके प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया तो स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया, पुत्रवती भव। कहते स्वामी जी आपका आशीर्वाद तो सार्थक नहीं हो सकता। सब लोग शिष्य आश्चर्य में पड़ गए कि रामानंदाचार्य जैसे वैष्णव के आशीर्वाद को कह रहे सार्थक नहीं हो सकता। स्वामी जी ने पूछा क्या बात हुआ। कहते स्वामी जी मेरा पति तो संन्यास ले चुका है और देव संयोग से अभी आपके साथ में ही भ्रमण भी कर रहे। अब जब उन्होंने संन्यास ले लिया है तो मुझे पुत्र कैसे उत्पन्न होगा फिर। तो स्वामी जी ने कहा मेरे मुख से वचन निकला है तो ये भगवान की कृपा है, भगवान ने कुछ प्रेरणा देकर कहा होगा। तो उसको कहा कि तुम्हारी ऐसी सतीपरायण पत्नी है तो तुम अभी उसके साथ जाओ और भगवान का कार्य पूरा करो। अब संन्यास लिए थे तो संन्यास छोड़कर जाने की इच्छा नहीं थी घर में कि गुरुजी प्रभु भजन करेंगे, संन्यास लिया है क्यों संसार में डाल रहे वापिस हमको, इच्छा नहीं थी। लेकिन गुरुजी की आज्ञा थी, जब गुरु आज्ञा करते हैं तो वहाँ शिष्य की भी निजी इच्छाओं का बहुत महत्व नहीं रह जाता। अच्छा शिष्य फिर उस बात को मान लेता है। तो उन्होंने क्या किया, उनका जो हाथ लेके उनकी धर्म पत्नी के हाथ में दे दिया। विट्ठल पंत जी नाम था, संन्यास लेने के बाद उनका नाम भवानंद पड़ गया था, लेकिन अपनी पत्नी के हाथ में हाथ दे के बोला भी संसार में जाओ और भगवान की कृपा से ही तुम्हारे वहां पर दिव्य पुत्र का जन्म होगा, इसलिए तुम कोई चिंता मत करो, तुमको कोई आपत्ति नहीं होगी। प्रायः व्यक्ति इसलिए डरता है क्योंकि संसार के इस मोह रूपी जाल में फंसकर कहीं भगवान से दूर ना चला जाए, लेकिन गुरुजी ने आश्वासन दिया कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। आ तो गए संसार में वापस, लेकिन क्या हुआ, अनेक ब्राह्मणों ने और बाकी लोगों ने उनको धुतकार दिया। कहते तो बनता सी है, वैरागी साधु बनने के बाद पुनः भोग करने के लिए आया होता है उसको बंतासी कहते हैं, ये तो सही साधु नहीं है। मूड आया घर छोड़ दिया, संन्यास ले लिया, मूड आया तो वापस विवाह भी कर का जीवन भी जी लिया, ये कोई जीवन होता है क्या। और संन्यास धर्म के बाद विवाह करने आए ये तो बड़ा गलत कार्य है। तो लोगों ने उनको धुतकार दिया, लेकिन उनको परवाह नहीं थी क्योंकि वो अपने गुरुजी की आज्ञा का पालन कर रहे थे और उनको पता था कि हमारे गुरुजी सामान्य व्यक्ति नहीं है कोई। तो थोड़ा गांव से अपना अलग रहने लगे, ये भी अच्छा ही, जब समाज सामने से दूर कर दे तो मोह माया तो अपने आप निकल गई, नहीं तो समाज की ऑब्लिगेशन में कई सारे काम तो ना इच्छा हो तो भी करने जाना पड़ता है। यहाँ तो समाज ने कहा कि आप अलग हो जाओ, हो गया व्यक्ति वापिस वैरागी, अब समाज ही नहीं रहा तो बंधन नहीं रहा। संतों की ये समझ होती है। नरसिंह जी के प्रसंग में भी एक बात आती है। नरसिंह जी की घरवाली हमेशा उनको कहती थी कि ये पुत्र के विवाह की तो चिंता करो, उम्र होती जा रही है, समाज में लोग क्या कहेंगे। तो नरसिंह जी की समझ कैसी थी, जिसका पुत्र है वो चिंता करे, जिसने हमारे घर भेजा है, जो संसार का पालन करता है वो इसका भी पालन करेगा, वो चिंता करे, हम क्यों जबरदस्ती चिंता करें। और कहते समाज से जोड़ने की बात करो, समाज तो यहीं रह जाएगा, जिस समाज की रचना यहीं पर हुई है वो तो यहीं पर रहेगा। कहते अगर इसको जोड़ना भी हो ना, तो कहते जो समाज भगवान के घर जाता है ना, और भगवान के घर कौन सा समाज जाता है, साधु मंडली, वो भगवान के घर की और जाते हैं। कहते साधु मंडली से जोड़ दो तो भगवान के घर जा सकता है, समाज तो वो सही है, बाकी समाज तो यहाँ आज इस जन जाति में जन्म हुआ तो ये समाज, कल दूसरी जाति में तो दूसरा समाज, ये तो यहीं पर निर्माण हुआ और यहीं पर रहेगा। इसलिए इन्होंने भी कोई ज़्यादा चिंता नहीं की। कहते कोई बात नहीं, अगर समाज वाले नहीं मानते तो कोई आपत्ति नहीं, वो अपना जीवन जीने लगे। भगवान की कृपा से उनके घर में 3 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म हुआ। निवृत्तिनाथ तो सबसे बड़े थे, फिर ज्ञानदेव जी और सोपान देव जी, और बेटी थी मुक्ताबाई। निवृत्तिनाथ शिव जी के अंश में से प्रकट हुए थे, ज्ञानदेव जी वो विष्णु के अंश में से प्रकट हुए थे, सोपान देव जी ब्रह्मा जी के अंश से प्रकट हुए थे, और मुक्ताबाई जी योग माया के अंश से प्रकट हुई थी। अब ये तो उनके संतानें थी। ऐसा व्यक्ति संसार में भी सन्यासी जीवन में रहे, गृहस्थ जीवन में रहे, गुरु की आज्ञा पालन करने जो भी कार्य करे उसको क्या आपत्ति है। इतने उत्तम उत्तम गुणवान संतानों को जन्म देने के बावजूद भी समाज उनको स्वीकार नहीं कर रहा था, और उनके संतानों को भी स्वीकार नहीं कर रहा था कि आप लोगों की तो ठीक है कोई जाति नहीं है, ऐसा कहकर ताने मारते रहते थे। भक्तों को वैसे टानों का कोई आपत्ति नहीं होता, लेकिन वो संतानों के ऊपर भी टाने मारते थे। तो कुछ ब्राह्मणों ने उनको राय दी, जब तक आपने प्रायश्चित नहीं किया ना, तब तक हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे। आपने संन्यास से गृहस्थ जीवन की ओर आए हैं तो आपको प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। उन्होंने धर्मपत्नी से कहा कि चलो अभी प्रायश्चित कर लेते हैं। त्रिवेणी संगम को चले गए और पति पत्नी दोनों गंगा में ही समा गए, हो गया प्रायश्चित, संसार में मुड़ के नहीं आना, अभी वहीं पर हो गए, वहीं से सीधे धाम, कर लिया प्रायश्चित। अब 4 संतान हैं, छोटे छोटे उम्र के हैं। उन चारों में ज्ञानदेव जी विष्णु के अंश के रूप में बड़े प्रखर थे। सभी भक्त थे, महान भक्त थे, लेकिन ज्ञानदेव जी की विशेषता थी उनमें। ज्ञानदेव जी हर एक चीज को किसी भी शास्त्र को, कोई भी शिक्षा को बस देखने मात्र से सारा स्मरण कर लेते थे। उनको उसके लिए कोई विलंब नहीं करना पड़ता था। छोटी सी अवस्था में उनकी ऐसी भक्ति थी कि ऐसे चमत्कार होते थे ना उनको। ये चारों भाई बहनों को ब्राह्मणों ने स्वीकार नहीं किया, तो उन्होंने एक बार कहा कि हम क्या प्रायश्चित करें बताओ। उन्होंने कहा पैठण गांव में जाओ और वहां का जो ब्राह्मण समाज है वो ब्राह्मण समाज अगर आपको स्वीकार कर ले तो हम लोग भी आपको स्वीकार कर लेंगे। चारों भाई बहन पैठण गांव को चले गए और वहां पर सभा बुलाई गई और कुछ लोग उपद्रवी प्रकृति के थे जिनको मजा आता था परेशान करने में, और प्रायः भक्तों को तो परीक्षा देनी पड़ती है और भक्त परीक्षा देते वो जगत के लिए भी अच्छा होता है क्योंकि उसमें से जो निकलने वाले परिणाम होते हैं ना वो अनेक लोगों को लाभ देते हैं, इसलिए प्रायः भक्तों की परीक्षा तो होती ही रहती है और वो भी कठोर से कठोर परीक्षाएं होती है क्योंकि सामान्य व्यक्ति की बस की नहीं है कैसी परीक्षाएं दे सके, वो भक्त ही दे सकते हैं कि पुत्र को दान में मांग लेना या पुत्र के टुकड़े कर देना, ये परीक्षा सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। किसी भक्त की धर्म पत्नी का दान मांग लेना, कभी साधु सेवा करने के लिए ऐसा विवश हो जाना उसको कि अपने तन को बेचने निकलना, ये सब परीक्षाएं सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, ये तो भगवान के महान भक्त ही कर पाते हैं। इसलिए भगवान उनके माध्यम से भी संसार में हम सब लोगों को मार्गदर्शन देते हैं, एक हिम्मत बंधवाते हैं कि मेरी भक्ति में आपको ऐसे बनना चाहिए, इतना विश्वास रखना चाहिए मेरे ऊपर। तो चारों भाई बहन पैठण में चले गए, सभा आयोजित हुई, उन्होंने कहा हमको वेद पढ़ने का अधिकार है कि नहीं है, तो लोगों ने उनको तुच्छ करके झुकाने के लिए क्या कहा कि कुत्ता हो गधा हो कोई पशु पक्षी या कोई अछूत जाति का हो या ब्राह्मण हो, कैसे भी प्रकार का व्यक्ति हो आपने सबको प्रणाम करने का, तब हम मानेंगे कि आप निर अभिमानी हैं और ब्राह्मण जैसे गुण है आप में। वो लोग तो हृदय से इस बात को स्वीकार करते थे, क्यों? क्योंकि वो सोचते थे कि सबके हृदय में जब आत्मा है तो सबको सम्मान करने में फिर आपत्ति क्या है। भगवान गीता में भी तो कहते हैं कि भाई ब्राह्मण हो हाथी हो या गाय हो या किसी भी निम्न प्रकार का व्यक्ति हो, ब्राह्मण गवि हस्तिना सुनि चेव स्वपा चेव पंडित समदर्शिना, जो पंडित होता है वो तो समदर्शी होता है, वो तो ऐसा भेद नहीं करता। तो उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया क्योंकि वो तो आत्मा की दृष्टि से सबको वैसा ही समझते थे। तो एक उसमें आडंबर वाला व्यक्ति था, उसने क्या किया अपना भैंस ले आया, कहते आपको भैंस के अंदर अपने आप को देख पाते हो, देख सकते हो भैंस के अंदर भी, मतलब कि अपने अंदर आत्मा है वो भैंस में भी देख सकते हो, भैंस में भी परमात्मा दर्शन कर सकते हो। तो उन्होंने भैंस को देखा और बोला बिल्कुल कर सकता हूं मैं, और उन्होंने उसको भी वैसा ही सम्मान दिया। कहते वो तो आप मुंह से बोलते हो, हम कैसे माने कि आप भैंस को भी वैसा सम्मान कर सकते हो। उन्होंने कहा हंटर मंगाइए और भैंस को हंटर मारिए। जब भैंस को चार कोड़े मारे गए तो भैंस के ऊपर उसका एक भी निशान नहीं, चारों के चारों निशान उनके शरीर के ऊपर दिखाए उन्होंने, ये देखो मेरे शरीर के ऊपर, मैं एक ही मानता हूं अलग नहीं मानता, वहां आपने हंटर मारा मेरे को लग गए। लोगों ने देखा तो आश्चर्य कर गए, कहते हो सकता है कोई चमत्कार करता होगा ये। कहते भक्त लोग अगर कई बार अपनी भक्ति का प्रभाव दिखाते भी ना तो भी अहंकारी व्यक्ति उसको नहीं समझते, जैसे भगवान कृष्ण समझाते थे तो दुर्योधन को समझ नहीं आती थी, भगवान ने थोड़ा चमत्कार दिखा भी दिया सभा में तो भी दुर्योधन कहता है कि तो माया भी है, बचपन में भी ऐसी माया करता था इसलिए इसकी माया से हमको कोई भय नहीं है। तो मूर्ख व्यक्ति जो होता है ना वो तो फिर भी इन बातों को नहीं समझता। उन्होंने कहा आप वेद पढ़ने की बात करते हो, ये जो भैंसा है वो भी वेद पढ़ना चाहता है, तो कैसे पढ़ेगा बताओ। उन्होंने भैंसे को बोला बोलो वेद बोलो, वेद पाठ उसको बुलाया, वो सामने बोलने लगा भैंसा वेदों का पाठ करने लगा। कहते जो भैंसे से वेदों का पाठ करा लेता है वो खुद विनम्रता से उनसे पूछता है कि हम वेद पाठ कर सकते हैं, हमारा अधिकार है वेद में। सब लोगों ने देखा कि जो तो पशु के अंदर से वेद बुलवा सकता हो वो व्यक्ति खुद इतनी विनम्रता से अपने लिए मांग रहा है, तो इसको समझना चाहिए कि इनकी विनम्रता है, ये तो चाहे तो सब कुछ करते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने सबको दिखा दिया वहां पर कि वो किस प्रकार से सब कुछ ज्ञान धारण करते हैं और फिर भी विनम्र है, क्योंकि विद्या विनय संपन्न है। वास्तविक विद्या वो होती है जिससे विनम्रता आती है। ये कौन सी विद्या है जो अहंकार का चोला पहन के घूमती रहती है और लोगों को हराती रहती है? ये जो दिग्विजयी लोग चलते हैं ना शास्त्र के शास्त्रार्थ करने के लिए, एक प्रकार का वाक युद्ध करने के लिए, वो जो दिग्विजयी होते हैं वो तो ग्रंथों का अहंकार करते हैं, ज्ञान का अहंकार करते हैं। वास्तव में ज्ञान होता नहीं उनमें, क्योंकि ज्ञान तो व्यक्ति के हृदय को स्थिर करता है, और जब हृदय स्थिर होता है तो वो मन भगवान के चरणों में लग जाता है, उसको तो अपने आप शांति की प्राप्ति हो जाती है। भारी भक्ति में लगा हुआ जो मन है वो तो संतोष का अनुभव कर लेता है, लेकिन अगर व्यक्ति बोल रहा है लेकिन आचरण में नहीं है तो ये मान लेना चाहिए कि उसके जबान तक सीमित है लेकिन अंतरात्मा में अनुभव रूप में कुछ नहीं है। एक पंडित जी जब भी कथा करते ना हमेशा यही करते कि संतोष से बड़ा कोई धन नहीं है। हाथी धन, गज धन, बान बाज धन और रतन धन खान, जो आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। संतोष धन आ गया तो बाकी सब धूल जैसा है। एक राजा ने सुना कि जब भी बोलते हमेशा यही बात बोलते, बस संतोष होगा तो सब हो गया। कहते इनमें संतोष है कि नहीं, लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा, ये बोलते तो है लेकिन। अभी क्या हुआ, राजा ने बोला हमारे यहां कथा करने आओ, कथा करने बुलाए। ये चले गए कथा करने के लिए। कथा तो बहुत अच्छी करते थे, बड़े सब भाव से प्रसंग बताते थे, राजा को भी अच्छी लगी, सबको अच्छी लगी। जब कथा की पूर्णावती हो गई तो राजा ने दक्षिणा में मात्र 2 रुपये दिए। उन्होंने कोई विचार नहीं किया, सुखी सुखी वो 2 रुपये लेके निकल पड़े। राजा कहते हैं इनको कोई आश्चर्य नहीं हुआ, 2 रुपये लेके निकल पड़े, वास्तव में मतलब संतोषी व्यक्ति है। इसके पैरेलल भी एक समझने वाली कथा आती है कि एक साधु कथा करते थे, सब लोग रोते थे भाव में। एक व्यक्ति को आश्चर्य हो गया, साधु कथा करते सब लोग रोते हैं। कथा के उपरांत में साधु को जाके पूछा, महाराज एक प्रश्न है, कहते क्या प्रश्न है? कहते आप कथा करते हो सब लोग रोते, आप क्यों नहीं रोते? कहते हम कथा के आखिर में रोएंगे कि नहीं उसका पता चलेगा। कहते कैसे? कहते अगर दक्षिणा उचित मिल गई तो बराबर है, नहीं तो हम भी रोएंगे बाद में। तो वो दक्षिणा को लेकर रोते हैं। ये संत 2 रुपया लेके निकल गए, रस्ते में बनिया मिल गया। बनिया कहते कहां से बता रहे हैं महात्मा जी? कहते राजा के वहां गए थे। बनिया ने बंद में बाजी खेली, कहते राजा के वहां गए थे, जो मिला है मेरे को दे दो, मैं कई गुना करके लौटा सकता हूं आपको। उसको लगा राजा के वहां गए थे, कथा की होगी तो 5-10 हज़ार रुपये तो लेके आए ही आए होंगे। कहते ठीक है भाई, तेरी जो इच्छा ले, अगर तेरे को लाभ लेता है होता है तो तू ले ले। कहते मैं बाहर विदेश जा रहा हूँ व्यापार करने के लिए, तो आपका पैसा भी लगाऊंगा उसमें, मिलेगा तो आपको रिटर्न भी दूंगा उसका अच्छा। कहते ठीक है पहले दोनों के बीच में चर्चा होगी। कहते लाओ दो, उसने 2 रुपये निकल के दे दिया। कहते राजा के वहां गए थे, 2 ही रुपये मिला? कहते बस यही मिला। अब वो भी सोचने लगा 2 रुपये में क्या करूंगा मैं, 2 रुपये लगाऊंगा कहाँ और उसके कितने बनाऊंगा मैं। अब ठेका हो गया था, 2 रुपये लेके निकल गया वो। अब भ्रमण किया उसने, अब सोचा 2 रुपये में क्या इन्वेस्टमेंट करूं तो रिटर्न मिले ज्यादा, कुछ तो इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकता था। तो क्या होता था, घूमते 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 उसको 2 बिल्ली के बच्चे छोटे छोटे दिख गए। तो उसने नवजात छोटे छोटे 2 बच्चे थे, उसने 2 रुपये में वही खरीद लिए। हैं, कहते खेलने के तो काम आएंगे, वैसे तो कुछ काम नहीं आएंगे, 2 रुपया ले आया। कई दिनों के बाद घूम घाम के जब वापिस आया तो राजा जो था उसने भंडारा रखा हुआ था और बड़े सारे साधु बैठे थे और कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं। ये वहां पहुंचा, पूछ रहे क्या हो रहा है। कहते राजा कुछ बातों को लेकर बड़े परेशान है। कहते क्या प्रॉब्लम हो। राजा के पास गया, कहते क्या आपत्ति है बताइए जरा। तो राजा ने कहा कि सारी व्यवस्था ठीक करके रखी, नहीं चूहे कहां से आ जाते समझ में नहीं आता। साधु लोग खाते तो खाते समय लड्डू उठा के भाग जाते, चूहों ने बड़ा आतंक करके रखा हुआ है, बड़ा परेशान हो। कहते महाराज इसका समाधान है मेरे पास, लेकिन आपको जो उचित लगे वो बदले में उपहार दे देना मुझे। कहते ठीक है। उसने 2 बच्चे निकाल के दे दिए। कहते महाराज इनको लगा दो पहरी करने के लिए। हाँ, लगा दिया उनको पहरी करने के लिए, अब कोई चूहा ही ना आए वहां पर। अब राजा बड़ा खुश हो गया। राजा ने 2000 रुपये दे दिए उसको। पंडित जी के पास आया वो, पंडित जी को आके कहता है महाराज आपके 2 रुपये ने तो बड़ा चमत्कार कर दिया। कहते 2 के 2000 बन गए, ये लो 2000 आपके ही है। पंडित जी ने 2000 भी लिए तो भी कैसे लिए, जैसी हरि की इच्छा। पंडित जी ने कहा इतने तो मेरे काम लगने नहीं है। उन्होंने अपने वहां पर एक भंडारा और किया, सब साधु संतों को बुलाया, इतने की तो मुझे आवश्यकता नहीं है, सब साधु संतों को बिठा के भोजन करा रहे। राजा को समाचार मिला कि आज एक जगह पर भंडारा हो रहा है। राजा ने पूछा कहाँ भंडारा हो रहा है। राजा ने पता करवाया तो कहते हो पंडित जी भंडारा करा रहे। राजा ने सारा विवरण लिया, पंडित जी भंडारा कैसे करा रहे, उनको तो 2 ही रुपया दिया था हमने। सारा विवरण जब पता चला तो राजा आया, बड़ा प्रसन्न हो गया। राजा ने 5000 रुपया दे दिया, खुश होके कि आप तो बड़े उदार व्यक्ति हो, रख लो। और पंडित जी ने वो 5000 रुपया रख लिया। कहते जरूरत पड़ेंगे तो वो भी खर्च कर देंगे किसी जगह पर। तो संतोषी प्रकृति के व्यक्ति थे वो, उनको कोई उद्विग्नता नहीं थी, जो है सब ठीक है, संतोष है। तो जो साधु होता है ना उसका हृदय भगवान में लगा होता है तो संतोष अपने आप आता है। संतोष नहीं है, अधीरता है। इसका मतलब कि मन भगवान के पास नहीं लगा, कहीं बाहर जा रहा है, इसलिए उपद्रव मचा रहा है। अनेक लोग ज्ञानदेव जी को परेशान कर रहे हैं ऐसे, लेकिन ज्ञानदेव जी को फर्क नहीं पड़ता उन सब चीजों का। आखिर में कुछ लोगों ने माना भी सही कि ये महान व्यक्ति है, इसलिए सबने पत्र पे लिख कर दे दिया कि हम आप सभी लोगों को अपने बिरादरी का ही मानते हैं और आपको ये वेद पाठ करने का सबका अनुमति भी देते हैं। वहां से ज्ञानदेव जी आगे निकले, एक ब्राह्मण के घर पे श्राद्ध क्रिया चल रही थी, तो स्वभाव से उन्हें बोला कि आइए आप भी प्रसाद लीजिए, यहां पर बैठिए। तो ब्राह्मण श्राद्ध कर रहा था। अब श्राद्ध करते किस लिए, हमारे पितरों को कुछ अर्पण करने के लिए। ज्ञानदेव जी ने सोचा कि अपने पितरों को रूबरू खिला दे तो कैसा रहेगा। उसने उन पितरों को याद किया और जो जो शरीर छोड़ के चले गए थे सबको वापस बुलाया और वहां बिठाया पंगत में, मतलब पिता भी आ गए, दादा भी आ गए, सब आ गए, पंगत में बिठाया उसके सामने और उसको बोला कि सबको पितरों को प्रसाद करा दे। उसने देखा कि इन्होंने तो मेरे पितरों को पितर लोग से ही बुला लिया, तो और चमत्कार फैल गया कि ज्ञानदेव जी महाराज ऐसे हैं कि भगवान की बड़ी कृपा है कि वो चाहते हैं वो हो जाता है। तो ज्ञानदेव जी महाराज वहां से भ्रमण करते करते निवासी गांव तक पहुंचते हैं। वहां पर क्या होता है, एक स्त्री रो रही बड़ी, उनको उनका दुख नहीं देखा गया। पूछती क्या हुआ, तो उसने बताया कि हमारे पति चले गए। क्या नाम था, कहते कहते सच्चिदानंद नाम था। ज्ञानदेव जी कहते सच्चिदानंद कभी मरता है क्या, वो तो सच्चिदानंद होता है, वो तो कभी मरता नहीं, फिर ये कैसे मर गए। हाँ, तो ज्ञानदेव जी उनके पास में बैठ गए और उनके पास में बैठकर उनके ऊपर हाथ फेर के उनको सचेत किया, उठ जाओ सच्चिदानंद तो थोड़ी मरते हैं, उठो। उठा दिया। जब वो मरे हुए उठ गए तो उनको पता चला कि इनकी कृपा से मैं जागा हूं। उन्होंने सोचा मेरा जीवन तो पूरा हो ही गया था, लेकिन इनकी कृपा से अगर मैं जागा हूं तो आगे वाला जीवन फिर संसार को कित क्या क्यों करे देकर, आगे वाला जीवन इन्हीं को ही दे देते। तो उन्होंने क्या किया, धर्मपत्नी से हाथ जोड़ के कहा इन्होंने मेरे को नया जीवन दिया, आगे वाला जीवन इन्हीं को अर्पण कर देते। धर्मपत्नी भी मान गए, ठीक है। वो उनके साथ हो लिए और भजन करते थे, उनका नाम पड़ गया सच्चिदानंद बाबा। साधु थे, उनका नाम पड़ गया। तो ज्ञानदेव जी ने क्या किया था, गीता के ऊपर एक ज्ञानेश्वरी टीका लिखी थी। उस समय उनकी उम्र 15 वर्ष की थी और जो टीका लिखी थी गीता के ऊपर उसका लेखन कार्य ये सच्चिदानंद बाबा ने किया था, पूरी ज्ञानेश्वरी टीका का। और वो जब तक जिए उनके पास में रहे और फिर वहीं से ही भगवत धाम को चले गए थे। तो ज्ञानदेव जी इस प्रकार अनेक लोगों के जीवों का उद्धार करते थे और स्वाभाविक रूप में वो चमत्कार दिखाना नहीं चाहते, लेकिन स्वाभाविक रूप में उनके जीवन में ऐसे चमत्कार प्रकट हो जाते थे। महाराष्ट्र में एक पदार्थ बनता है मांडे जिसको कहते हैं, उत्सवता तो सब लोग वो बना रहे थे, मुक्ताबाई की भी इच्छा हुई कि हम भी वो बनाए, लेकिन बनाने के लिए ना चूल्हा है ना लकड़ियां है ना कोई बर्तन है, अब बनाए कैसे। तो मुक्ताबाई को दुखी देखकर ज्ञानदेव जी कहते क्या हुआ बहन, कहते मुझे भी मांडे बनाने की इच्छा है आप सब लोगों के लिए, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। तो ज्ञानदेव जी कहते बस इतनी सी बात है। ज्ञानदेव जी भगवान को जैसे दंडवत करते ना ऐसे जमीन के ऊपर लेट गए, कहते मेरी जो पीठ है ना उसके ऊपर बना तेरे को जो बनाना है वो। पीठ ऐसी गर्म हो गई, ऐसी जलने लगी जैसे कि अग्नि जलती है ना, ऐसे जलने लगी पीठ। उसके ऊपर उन्होंने मांडे पकाए और मांडे बनाए उसी के पीठ के ऊपर, और लोग देख रहे कि इनकी पीठ के ऊपर मांडे बन रहे। ऐसे थे ज्ञानदेव जी महाराज। संत स्वाभाविक रूप से चमत्कार दिखाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते। संत तो अपनी भक्ति को प्रायः गुप्त रखते हैं, ये भी नहीं दिखाना चाहते थे, लेकिन सामान्य प्रवृत्ति में उनकी जो करुणा थी वो जो बाहर आ जाती थी तो लोगों को वो चमत्कार के रूप में प्रतीत होती थी। उनका ऐसा कोई विचार नहीं होता था कि मैं चमत्कार दिखा के लोगों के प्रति मान सम्मान की प्राप्ति करूं। चारों भाई बहन इच्छा की है कि तीर्थ यात्रा करते हैं, तो तीर्थ यात्रा करने के लिए पंढरपुर पहले पहुंचे, और पंढरपुर पहुंचने के बाद भगवान पंढरीनाथ जी से, विठल जी से उनका पुत्र मांगा। कौन है उनका पुत्र? नामदेव जी महाराज, क्योंकि भगवान ने आशीर्वाद दिया था और नामदेव जी का जन्म हुआ था। उनकी माता को नामदेव जी का जन्म सीधे गर्भ में ही हुआ था, अविवाहित अवस्था में ही हो गया था। भगवान ने आशीर्वाद दिया खुश होकर तुम्हारा एक पुत्र होगा, और नामदेव जी प्रकट हुए थे तो भगवान के ही पुत्र थे। इसलिए सब लोग पंढरपुर में मानते थे कि जो नामदेव जी है ना वो भगवान के पुत्र है, और चहिते पुत्र है भगवान के बड़े। तो ज्ञानदेव जी सोचे तीर्थ यात्रा करते नामदेव जी को भी साथ में ले चलते हैं। तो विठल भगवान से उन्होंने नामदेव जी को मांगा, विठल भगवान ने अनुमति दे दी। नामदेव जी ज्ञानदेव जी को अपना गुरु ही मानते थे एक तरीके से, वो गुरु तुल्य मानते थे। साथ में चल पड़े। वहां से काशी जब पहुंचे तो काशी में श्री मुद्गलाचार्य मणिकर्णिका घाट के ऊपर एक बहुत बड़ा यज्ञ करने जा रहे थे। तो यज्ञ में जो प्रथम जिसकी अग्र पूजा की जाती है ना, कोई भी अच्छा कार्य करने के लिए जो प्रथम अग्र पूजा की जाती, जैसे अब कर्मकांडी विधियों में जैसे गणपति जी को बिठाया जाता है, जैसे राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर महाराज ने अग्र पूजा के लिए कृष्ण भगवान को रखा था, तो ऐसा अग्र पूजा की जाती है। तो बहुत सारे साधु संत आए थे वहां पर। तो श्री मुद्गलाचार्य सोच रहे कि अग्र पूजा के लिए किसको नियुक्त किया जाए, ऐसी चर्चा हो रही थी। अब बहुत सारे साधु है तो किसको कहे, तो आखिर में निर्णय निकला हाथी की सूंड में माला लगा देते हैं, और हाथी भ्रमण करके जिनकी सूंड में माला डाल देना उनको अग्र पूजा के लिए बिठाएंगे। हाथी की सूंड में माला डाल दी, हाथी घूमता घूमता नामदेव जी के पास, ज्ञानदेव जी के पास गया, और ज्ञानदेव जी को उन्होंने माला पहना दी। ज्ञानदेव जी को माला पहनाई, जब ज्ञानदेव जी की उम्र बड़ी छोटी थी, मुश्किल से 17 वर्ष के थे, लेकिन सब लोगों ने ज्ञानदेव जी का प्रभाव देखा, उनका जो रूप देखा ना, बड़ा तेजस्वी प्रकृति का रूप था उनका। सर्वसम्मति से उनको अग्र पूजा में बिठाया गया। तो वहां पर ज्ञानदेव जी की बड़ी महानता स्थापित हुई कि ऐसे अद्भुत प्रकृति के संत है ये। और वहां से भ्रमण करते हुए वृंदावन में आए। जब वृंदावन में आए तो वहां पर विष्णु स्वामी, जो रुद्र संप्रदाय के आचार्य हुए थे, विष्णु स्वामी जिनका जन्म दक्षिण में हुआ था और बाद में फिर भगवान की कृपा से वो उत्तर भारत की तरफ आए थे और वैष्णव संप्रदाय का उन्होंने प्रचार किया था, और वही विष्णु स्वामी के आगे जाके परंपरा में शिष्य बनते वल्लभाचार्य जो रुद्र संप्रदाय में थे। विष्णु स्वामी के पास जब वृंदावन में आए थे, विष्णु स्वामी तो उस समय शरीर से उपस्थित नहीं थे, लेकिन जब वृंदावन में आए तो विष्णु स्वामी ने देखा कि ये व्यक्ति बड़े उपयुक्त है, बड़े महत्वपूर्ण प्रकृति के है, ये एक ऐसी योग्यता रखते हैं कि जिनको कुछ दिया जाए तो आगे जीवों को बांटेंगे। तो विष्णु स्वामी वहां पर खुद प्रकट हो गए और प्रकट होकर उन्होंने ज्ञानदेव जी को दीक्षा और शिक्षा दी। ज्ञानदेव जी में तो इतनी भक्ति थी, लेकिन विधिवत गुरु हर महान वैष्णव धारण करते हैं। वो कहते ना कि स्वयं से व्यक्ति गुरु बन बैठता है और आग्रह रखता है कि मेरे चेले होने चाहिए, लेकिन मेरे को गुरु की आवश्यकता नहीं है, वो वास्तव में धूर्त है। भगवान ने स्वयं हर अवतार में गुरु धारण किए हैं, जिसमें राम जी है, कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु है, महान महान आचार्य लोग भी आए धाम से, उन्होंने भी गुरु धारण किए, जैसे रामानंदाचार्य हो गए या रामानुजाचार्य, माध्वाचार्य, जितने भी महान वैष्णव हुए थे, स्वयं वेद व्यास जी भी क्यों ना हो, उन्होंने भी धारण किए नारद मुनि को। तो इस तरीके से ये भक्ति तो परंपरागत होती है। स्वयं से कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए और कहे मुझे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, मैं जो कहूंगा वही दिव्य ज्ञान होगा, इसलिए आप सब लोग अभी मेरे को आगे से मानना, और वो खूब सारे शिष्य बना रहा है, लेकिन उसका आगे का कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो ऐसे भ्रमित गुरुओं के पास जीव को नहीं जाना चाहिए। अपना अनमोल जीवन ऐसे गुरुओं के लिए बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो खुद तो शास्त्र का पालन ना करता हो, जिसने खुद धर्म की रीति के अनुसार हरि भजन ना किया हो, जिसको स्वयं गुरु परंपरा में कोई स्वीकृति ना हो, और ऐसा व्यक्ति मात्र कुछ चंद बातें करके या हो सकता है कुछ ज्ञान सिद्धियों के माध्यम से भी अर्जित कर ले, और वो अगर अपने आप को गुरु स्थापित करता है तो शास्त्र उसको गुरु नहीं मानता। लेकिन हो सकता है संसार में कुछ चंद लोग मान भी ले, लेकिन शास्त्र परंपरा उसको स्वीकार नहीं करती है, क्योंकि भगवान तक भी जिस परंपरा का पालन निश्चित रूप से करते हैं, तो भी सामान्य व्यक्ति क्यों ना करे। इतने महान थे ज्ञानदेव जी महाराज, लेकिन फिर भी उन्होंने विष्णु स्वामी जी से दीक्षा ली थी, और वहां से दीक्षा लेने के बाद पंढरपुर आए, और पंढरपुर से फिर आनंदी अपने गांव तरफ आ गए, वहां पर रहते थे। तो एक दिन की घटना में क्या होता है, तापी नदी के किनारे पर चांगदेव नाम का एक योगी है जो आश्रम बनाकर रहता है और 1400 वर्षों से जी रहा है। योगी लोग अपनी उम्र को लंबा कर लेते हैं, अमुक अमुक समय के अंतराल में वो उम्र को बढ़ा लेते हैं। 1400 वर्षों से जी रहा था और अनेक अनेक प्रकार के चमत्कारपूर्ण कार्य भी करता था, तो उसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे उसके अनुयायी बन चुके थे, और जब बहुत सारे अनुयायी बन जाते तो ये भी एक पतन का मार्ग खुलता है। सच्चा गुरु होता है उसको तो आपत्ति नहीं होती है, लेकिन सामान्य प्रकृति का व्यक्ति होता है तो उसके लिए पतन का मार्ग खुलता है जब बहुत सारे अनुयायी बन जाते हैं। तो ये इतने अहंकार में रहता था, अभी उसको ज्ञानदेव जी महाराज जी की महानता के विषय में सुनने को मिला, तो उसको लगा ये तो मेरे बराबर के कैसे हो सकते, अहंकार हो गया उसको, ईर्ष्या होने लगी उसको। कहते मैं उनको मिलने जाता हूं, फिर तो जो शिष्य लोग थे ना उसी के समान, उन्होंने कहा आप इतने वर्षों से जी रहे, 1400 वर्षों से जी रहे, इतने वृद्ध है, और आप एक छोकरे को, एक बालक को मिलने के लिए जाएंगे, आपकी ख्याति का क्या होगा फिर बाद में? अरे उसको यहां आना चाहिए, आपको थोड़ी वहां जाना चाहिए। तो कहते ठीक है, उसको पत्र लिखकर फिर बुलाते हैं। तो क्या हुआ, अभी पत्र लिख रहे तो पत्र में जब लिखावट होती है तो उसमें कुछ संबोधन करना पड़ता है, कभी प्रणाम कर रहे, रिक्वेस्ट करके लिख रहे, या तो गुरु अपने शिष्य को पत्र लिखेगा तो आशीर्वचन देगा, आशीर्वाद दे रहा है। अब ये सोच रहे कि पत्र में प्रणाम लिखूं कि आशीर्वाद दूं। प्रणाम तो इसलिए नहीं लिख सकता क्योंकि अहंकार इतना ज्यादा है कि झुक नहीं सकता, इसलिए प्रणाम कैसे लिखे। ऐसे दो भक्त फोन पे बातें करते हैं तो फोन पे फोन उठाते समय बोलते ना हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम, तो व्यक्ति बोलता है, क्यों? क्योंकि वो सम्मान देना चाहता है, लेकिन अहंकारी प्रकृति का जीव होगा वो ये बोल भी नहीं सकता, करना तो बहुत दूर की बात है, जबान से भी नहीं निकलेगा। सोचा प्रणाम तो नहीं लिख सकता मैं, और इनकी भी ख्याति बड़ी फैली हुई है, आशीर्वाद दूंगा तो भी गलत हो जाएगा, लोग क्या बोलेंगे, इसलिए आशीर्वाद भी नहीं लिख देता। एक काम करता हूँ, खाली पत्र भेज देता हूँ, देखते हो क्या समझते हैं इसको। खाली पत्र आ गया, चांगदेव जी का एक शिष्य खाली पत्र लेके आ गया, आके ज्ञानदेव जी को दिया और सारी परिस्थिति बता दी कि मैं चांगदेव जी के वहां से आया हूं और ऐसे। तो ज्ञानदेव जी ने क्या किया, उसके अंदर 65 अभंग लिख दिए भक्ति को संबोधित करते हुए। जो श्लोक होते हैं उसको महाराष्ट्र में वहां अभंग बोलते हैं, जैसे पद होते हैं ना, दोहा बोलते हैं जैसे रामायण में, ऐसे वहां महाराष्ट्र में अभंग बोलते हैं उसको। 65 अभंग लिख दिए कोरे कागज में, तो पास में मुक्ताबाई बैठी थी, वो क्या कहती है, चांगदेव जी 14 वर्षों से जी रहे लेकिन फिर भी अभी कोरे के कोरे ही है, कुछ नहीं लिख पाए, पूरे कोरे हैं। तो ये बात देखते हुए ज्ञानदेव जी ने सोचा फिर तो कुछ देते हैं उनको, तो उन्होंने 65 अभंग लिख के कागज हाथ में पकड़ा दिया और लेके चला गया। अब चांगदेव देखता है उस कागज को, पढ़ता भी है लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब क्या होता है, उसको कुछ समझता नहीं है कि इसका मतलब क्या है। उसको बड़ा गुस्सा आ गया कि मैंने कोरा कागज भेजा था, इन्होंने इतना सब कुछ लिख के भेज दिया, अब तो इसको मिलना ही मिलना है, इसको प्रभाव दिखाना पड़ेगा अभी मुझे। तो बहुत सारे चेले चपाटे इकट्ठे किए और सिंह बुलाया और सिंह के ऊपर बैठ गया। वो योगी लोग है ना, कंट्रोल कर लेते कई सारी चीजों को, उनके पास सिद्धियां होती है ऐसी, वशीकरण सिद्धि होती है, तो ऐसे कंट्रोल कर लेते हैं, व्यक्तियों को भी कंट्रोल कर लेते हैं। सिंह को कंट्रोल करके सिंह की सवारी करते हुए एकदम शाही ठाट बाट से अभी वो आनंदी में पहुंच रहा है। पहुंचने से पहले पहले एक शिष्य आया उसका, तो ज्ञानदेव जी उस समय सर्दियों में एक छोटी सी टूटी फूटी दीवार थी, उसके ऊपर तीनों भाई और बहन चारे लोग बैठे हुए थे और धूप सेक रहे थे बैठे बैठे। वो आया और उसने कहा कि ऐसे चांगदेव जी आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, शाही सवारी है उनके शेर की, बहुत लोग आ रहे तो आप उनको मिलिए। तो ज्ञानदेव जी कहते कोई अपने आ रहा है तो हमारा भी फर्ज बनता है ना, थोड़ा सामने जाए, हम भी यहाँ बैठे रहे तो अच्छी बात नहीं है। तो ज्ञानदेव जी जहाँ बैठे थे दीवार को बोला चलो चलो चलना है। वो जो दीवार थी ना, चारों भाई बहन बैठे हुए हैं और दीवार को लेकर ही चल पड़े। वो आ रहा था वहीं पर जाके खड़े हो गए दीवार पर बैठे बैठे। जब उसने दृश्य देखा ना उसी समय उसको समझ में आ गई बात, मैं अपना प्रभाव डालने के लिए सिंह के ऊपर बैठ के आया था लेकिन उन्होंने मुझे शिक्षा देने के लिए मेरा अहंकार तोड़ने के लिए वो दीवार के ऊपर बैठ के आए। मतलब एक जीव के अंदर तो चेतना होती है ना, तो उसको तो कंट्रोल किया जा सकता है, पशु को भी पालतू बनाया जा सकता है समझा के पढ़ा के, लेकिन ये तो मृतक पदार्थ है दीवार, तो इसको कैसे कंट्रोल किया इन्होंने, इसको कैसे आज्ञा दी और दीवार उड़ के आई। तब उनको समझ में आया ये मेरे से बड़े योगी है, सामान्य प्रकृति के व्यक्ति नहीं है। अभी तो ज्ञानदेव जी कुछ बोले ही नहीं थे, बस दीवार पर बैठ के आए ही थे। उतने में उसको समझ आ गई बात, उनका प्रभाव देख लिया उसने। उसी समय सिंह के ऊपर से नीचे उतरा और बहुत अच्छा कार्य क्या किया, इतने सारे उसके शिष्य देख रहे थे फिर भी उसने ज्ञानदेव जी को दंडवत प्रणाम किया, बहुत अच्छा कार्य किया। ये वैष्णव को दंडवत प्रणाम करने से तो जीव के कई कई जन्मों के पाप निकल जाते। कई बार अहंकारी जीव अपने बहुत सारे अनुयायियों के सामने झुक नहीं सकता। मेरे अनुयायी क्या सोचेंगे, अच्छा हमारे गुरुजी तो बड़े छोटे निकले, हम तो सोचते थे बहुत बड़े लेकिन ये तो बड़े छोटे निकले। तो इस प्रकार झुका नहीं जा सकता, लेकिन ये झुक गए, ये बहुत अच्छा कार्य किया उन्होंने। अपने जीवन में भक्ति का रास्ता उन्होंने वहां से खोला झुककर, और भक्ति मार्ग में विनम्रता से ही रास्ते खुलते हैं। अभी क्या हुआ, उन्होंने ज्ञानदेव जी का बड़ा यश गाया कि भाई मेरी गलती थी, मैं आपको पहचान नहीं पाया लेकिन आप वास्तव में बड़े महान हैं। फिर बड़ी विनम्रता से क्या कहते हैं, आपने 65 अभंग जो कागज में लिख के दिए थे ना, इसका मतलब समझाओ ना जरा, ये समझ में नहीं आया मेरे को, ये समझाओ जरा। तो ज्ञानदेव जी ने सोचा पहले इसकी थोड़ी परीक्षा कर लेते कि वास्तव में सीखना चाहता भी है कि नहीं चाहता। कई बार शिष्य गुरु से प्रश्न करता है सीखने के लिए, कई बार इसलिए प्रश्न करता है चेक करने के लिए कि गुरु में ज्ञान कितना है। तो ज्ञानदेव जी ने क्या किया, हम सिखा देंगे लेकिन उसके लिए तुमको पहले बलि देनी पड़ेगी, किसी की बलि देनी पड़ेगी फिर हम सिखाएंगे तुमको। अब बहुत सारे तो शिष्य आए थे साथ में जो अपने को अनुयायी बता रहे थे उसका, तो उसने मुंह फेर के देखा ऐसा, हाँ सबके ऊपर एक एक करके देख रहा है कि कौन तैयार हो रहा है बलि के लिए, ऐसे एक एक करके देख रहा है, एक एक करके देख रहा है, सब नीचे नीचे झुकते जा रहे हैं, हाँ कोई तैयार ही नहीं हो रहा है, सब लोगों ने माथा नीचे झुका लिया, एक भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ चांदे जी के लिए बलि दे अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए। और एक एक करके वहां से सब खिसक गए, खाली हो गए। आखिर में चांगदेव ने कहा एक काम करो मैं खुद ही अपनी बलि दे देता हूं, वो तो चलेगा ना। तो ज्ञानदेव जी ने कहा ये ठीक है, एक काम करो तुम अपने अहंकार की बलि दे दो उसके बाद मैं तुमको सिखा देता हूं। तो आखिरी जो बचा हुआ जो थोड़ा बहुत भी था ना, पहले तो जो कलयुगी चेले थे उनसे उनको मुक्त करा दिया, क्योंकि ऐसे कलयुगी चेले जब पास में रहते तो गुरु की बुद्धि हमेशा घूमी की घूमी रहती है, गुरु को भी पता नहीं चलता है कि वो सामान्य व्यक्ति है, उसको तो हमेशा ही लगता है कि वो श्रेष्ठ है। इसलिए एक राजा के पास ऐसे चाटुकर मंत्री नहीं होने चाहिए और गुरु के पास ऐसे कलयुगी चेले नहीं होने चाहिए। और ये कलयुगी चेले कैसे होते हैं, चार चमत्कार किसी ने दिखाए तो उनके पीछे लग जाते हैं, वो वास्तव में भक्ति के लिए समर्पण के लिए नहीं लगे होते, स्वार्थ के लिए लगे होते हैं। लेकिन वहां स्वार्थ पूरा ना हो तो पूरी की पूरी भीड़ एक ही साथ निकल भी जाती है फिर वहां से। ये तो थे कलयुगी चेले जो भाग गए। सच्चा गुरु का कोई शिष्य हो, सच्चा शिष्य होता है ना, वो तो गुरु के कहने अनुरूप तुरंत मरने के लिए तैयार हो जाता है। रामानुजाचार्य जी आश्रम में रहते थे ना, वहां पर एक कुआ था, कुएं में के ऊपर एक वृक्ष था, पास में पत्ते गिरते थे कुएं में, कुएं का पानी खराब हो जाता था तो उपयोग में लेना कठिन हो जाता था। उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि कोई ये बड़ी सी टहनी है ना उसको काट दे तो उधर के पत्ते अंदर ना गिरे, तो कुएं का पानी उपयोग में लिया जा सकता है। जट अंबादास तैयार हो गए, गुरुजी मैं ये काम करूंगा। सब लोग जानते थे ये काम जो करने जाएगा करीब करीब मर जाएगा, सीधा कुएं में जाएगा क्योंकि टहनी कुएं के ऊपर ही है, अब काटेगा तो जाएगा नीचे। तुरंत अंबादास तैयार हो गए, गुरुजी ये काम मैं करूंगा। गुरुजी कहते बेटा लेकिन बड़ा जोखिम वाला काम है। कहते कोई चिंता नहीं। ऊपर चढ़ गए, गुरुजी का ध्यान करते टहनी काटने लगे। टहनी कटी और भगवान की लीला भी ऐसी रही होगी, वो भी गिरे कुएं में। आवाज आई, सब लोग बोले कि अंबादास गिर गए, अंबादास गिर गए। गुरुजी आए देखे, अच्छा अंबादास गिर गए, अब क्या हुआ। जैसे ही कुएं के पास पहुंचे तो अंबादास बाहर आ गए। गुरुजी कहते बेटा क्या हुआ। कहते गुरुजी टहनी काट रहा था मैं, गिर तो गया नीचे कुएं में, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि मेरे को किसी ने नीचे से वापस ऊपर भी बाहर भेज दिया तो मैं ऊपर आ गया। कहते बेटा जिस भगवान ने तेरे को नीचे से ऊपर भेजा ना, वही भगवान तेरे को यहां से भी ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि तूने गुरु के वचनों को इतनी दृढ़ता से पालन किया है ना कि तू मरने के लिए भी तैयार है। ये होते सच्चे गुरु के सच्चे शिष्य। अब जब गुरु ही दूर थे तो गुरु ऐसी आशा क्यों करे कि मेरे शिष्य सच्चे हो। इसलिए सारे चेले वहां से भाग गए। उसको समझ में आ गया कि कोई ठीक नहीं था, क्योंकि वो खुद भी ठीक नहीं था। जब उसका अहम मर गया ना, तब ज्ञानदेव जी ने उसको 65 के 65 अभंग पढ़ाए और सारे अभंग भक्ति पूर्ण थे और उसको भक्ति की शिक्षा दी। और भक्ति की शिक्षा देने के बाद चांगदेव एक भक्त बन गया, क्योंकि अकेला चांगदेव झुका था उनमें तो वही भक्त बना, शिष्य नहीं झुका था एक भी भक्त नहीं बन पाया। इसलिए भक्ति राज्य में ऐसा है कि व्यक्ति विनम्रता से झुकता है तो भक्ति मिलती है। दिन प्रतिदिन ज्ञानदेव जी की ख्याति फैलने लगी। उस समय ज्ञानदेव जी की उम्र हो गई 22 वर्ष की। ज्ञानदेव जी ने सोचा दिन प्रतिदिन ख्याति फैल रही है तो भक्ति मार्ग के लिए अच्छा नहीं है। देखो सच्चा संत तो ऐसा ही होता है, अपनी ख्याति से घबराता है कि ख्याति फैलेगी तो माया आएगी। तो उन्होंने सोचा कि फिर काम करते समाधि ले लेते हैं। फिर तो समाधि लेने के लिए कहते पहले भगवान से आज्ञा ले लेते हैं। पंढरपुर गए, विठ्ठल भगवान से कहते प्रभु मेरे को समाधि ले लेनी है। अब जगत में लोग पीछे ही लगे हुए हैं, आए दिन तांता लगा रहता है। भगवान दुखी तो हो गए, लेकिन भक्त की इच्छा थी, भगवान ने कहा ठीक है समाधि ले लो। आनंदी में आए और एक वृक्ष के नीचे खड्डा खुदवा के वृक्ष के नीचे समाधि ले रहे, तो भगवान वहां पर भी प्रकट हो गए। और भगवान के देखते समाधि ली उन्होंने, ऊपर से मिट्टी डाल दी गई, अब समाधिस्थ हो गए। 22 साल की अवस्था में ज्ञानदेव जी समाधि ले चुके हैं। अब ज्ञानदेव जी ने समाधि ली तो नामदेव जी ना उनके वीर में बहुत दुखी हो गए, क्योंकि उनको वीर सता रहा था, तो बार बार वो रोते रहते थे। एक दिन भगवान से कहते नामदेव जी कि मुझे ज्ञानदेव जी से मिलना है। भगवान कहते ज्ञानदेव जी को मेरे में ही समझ तू। कहते प्रभु मेरे को इस प्रकार का ज्ञान नहीं, मेरे को तो ज्ञानदेव जी से ही मिलना है। ठीक है कहते भगवान ने ज्ञानदेव जी को सिर्फ नामदेव जी के लिए प्रकट कराया, उनसे मिले भी सही। फिर बाद में अप्रकट हो गए। समय रहते रहते एकनाथ जी आए और एकनाथ जी का गला एक दिन पूर्ण रूप से बंद हो गया, खराश हो रही, गले में दर्द हो रहा है, बंद हो गया। बड़े उपचार करा रहे लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। सपने में ज्ञानदेव जी आए, कहते मैंने जिस वृक्ष के नीचे समाधि ली ना उसकी जड़ मेरे गले में आके अटक गई है, तू वहां से मेरी जड़ हटा दे, तेरा गला अपने आप ठीक हो जाएगा। ज्ञानदेव जी ने जब सपना आदेश दिया ना, तो दूसरे दिन एकनाथ जी आ गए और एकनाथ जी ने आके वैसा ही किया, उनका गला ठीक हो गया। तो लोगों को लगा कि ज्ञानदेव जी ने भले समाधि ले ली है लेकिन वहां पर तो अभी भी वो जीवित ही है, और योग्य व्यक्ति होता है, कोई अधिकारी व्यक्ति होता है तो उसको आज भी दर्शन देते हैं, ऐसा साबित हो गया। तो इस तरीके से ज्ञानदेव जी जो थे वो भगवान के महान भक्त, स्वयं भगवान के अंश रूप में ही आए और बड़ी कृपा की, उन्होंने महाराष्ट्र में बड़ा भक्ति का प्रचार किया। ज्ञानदेव जी कई एक गुरु भाई थे, जो भी विष्णु स्वामी से दीक्षित हुए थे त्रिलोचन जी महाराज। त्रिलोचन जी महाराज भी सामान्य प्रकृति के व्यक्ति नहीं थे। त्रिलोचन जी महाराज क्षमा, वो ज्ञानदेव जी से दीक्षित हुए थे। नामदेव और त्रिलोचन जी दोनों गुरु भाई लगते थे और उन दोनों ने नाम ज्ञानदेव जी से दीक्षा ली थी, शिक्षा वगैरह भी ली थी। तो त्रिलोचन जी महाराज वैश्य परिवार में जन्मे थे, लेकिन वैश्य परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी वैश्य परिवार का कोई कार्य नहीं करते थे। वो क्या कार्य थे करते थे, अच्युत गोत्र में जन्मे जितने भी वैष्णव होते थे ना, उनकी सेवा ही मात्र करते थे। ये त्रिलोचन जी का एक ही मात्र काम था कि अपनी जो भी धन संपत्ति थी ना, वो अच्युत स्वयं भगवान का नाम होता है, उनसे संबंधित जो वैष्णव होते हैं अच्युत गोत्र में, उनकी सेवा करते थे। सेवा तो वो पूरे पूरे मनोयोग से करते थे और उनकी धर्मपत्नी भी अच्छी थी, वो भी उनको पूरा सहयोग करती थी भक्ति मार्ग में, साधुओं की सेवा करने में। ऐसा नहीं बोलती थी आए दिन किसी ना किसी को ले आते हो घर में, कौन बनाएगा उनके लिए इतना सारा, कौन मजदूरी करेगा, ऐसा नहीं बोलती थी। लेकिन वो दोनों पहुंच नहीं पाते थे सेवा करने में। तो त्रिलोचन जी हृदय से आशा करते हैं कि कोई एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए, कोई एक सेवक मिल जाए, उसको लगे तो हम उसको कुछ द्रव्य दे देंगे, लेकिन मिले तो ऐसा मिले जो संतों के हृदय को जानता हो और सेवा करता हो। किसी की अच्छी सेवा हम तभी कर सकते हैं जब उनके भावों को समझते हो। जब भाव नहीं समझते हैं तो हम अपने अनुसार करेंगे, उसको चाहिए कुछ और होगा। इसलिए कहते हैं वो शिष्य अच्छी सेवा करता है जो गुरु के भावों को समझता है। तो संतों की सेवा करने के लिए संतों के भावों को जानना जरूरी होता है। संतों के हृदय के समान व्यक्ति का जब हृदय हो तब व्यक्ति समझता है और सेवा करता है। इसलिए संत सेवा साधारण कार्य नहीं होता, संत सेवा के लिए उतने उत्तम गुण भी चाहिए जैसी सेवा करनी हो। तो त्रिलोचन जी कहते हैं कि कोई एक ऐसा नौकर मिले, उसको बदले में जो मुद्रा है, जो द्रव्य चाहिएगा वो दे देंगे, लेकिन भाव से संतों की सेवा करें। अब ऐसा कहाँ मिलेगा, कई दिनों से ढूंढ रहे लेकिन कोई मिल नहीं रहा है। नौकर तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन संतों के हृदय को समझ के सेवा करें ऐसा नौकर कहाँ मिलेगा। और आगंतुक संत तो कभी भी पधारेंगे और कोई भी सेवा बताएंगे, अब हर प्रकार का नौकर ऐसी सेवा तो करेगा नहीं। तो बड़े दिनों से ढूंढते थे लेकिन कोई मिलता नहीं था। भगवान ने सोचा इनको वास्तव में सेवक की जरूरत है और हम भी सेवा ढूंढ ही रहे थे, इन्हीं के घर चले जाएंगे ना तो अपने आप बहुत सारे संतों की जमात एक ही जगह मिल जाएगी और एक ही जगह हमारा भी काम हो जाएगा। वैसे तो कोई संत कभी सेवा करने देगा नहीं, लेकिन ये अच्छा मौका है उनके घर पे नौकर बनने का। तो आए दिन संत आते रहेंगे, एक ही जगह पर अपने आप मेला लगा रहेगा, अपने आप हमारा काम हो जाएगा, कहीं बाहर किसी को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। अब ये त्रिलोचन जी के घर के द्वार पर आके खड़े हो गए, फटा पुराना चप्पल और फटा पुराना कंबल और पूरे शरीर के ऊपर उंगल उंगल मैल चढ़ा हुआ है और ऐसे कठोर जैसे तांबे के तार जैसे वहां बाल बने हुए हैं और आके खड़े हो गए। कहते हमको समाचार मिला है कि आपको एक नौकर की आवश्यकता है। कहते है, कहते तुम करोगे, लेकिन कहते बिल्कुल करेंगे। कहते इसके पहले तुमने क्या क्या किया है बताओगे जरा। कहते हमको हर प्रकार का कार्य करने का अभ्यास है। उन्होंने कहा तुमको देखकर तो ऐसा लगता नहीं है, लेकिन कि तुम स्नान भी करते होंगे कभी, तो तुम जब अपना ही स्नान समय पर नहीं करते हो सेवा कहां से करोगे। भगवान कहते हम स्नान करते हैं जब कभी अवकाश मिल जाता है, तो पूर्णिमा पूर्णिमा कभी ऐसा उत्सव पे हम भी स्नान कर लेते हैं, क्योंकि हमारा कार्य इतना होता है, उसमें व्यस्त इतने होते हैं कि स्नान करने का भी नंबर नहीं लगता हमारा। कहते संतों की सेवा कर सकते हो, ये तो हमारा खानदानी काम है, इसमें तो मेरा भरपूर अभ्यास है, ये तो आप काम ही छोड़ दो, तो भूल जाओ अभी। कहते अलग अलग प्रकृति के संत, अलग अलग भाव वाले, अलग अलग समय पे आते हैं, अलग अलग इच्छाएं करते हैं। कहते हम हर संतों की हृदय की जानेंगे और वैसे सेवा करेंगे, और कुछ दिन करकरा के देख लो। कहते बदले में क्या लोगे? देखो हम जो मांगते ना वो हमको कोई देता नहीं, इसलिए हमारी प्रायः सब जगह सेवा होती नहीं। कहते कुछ ज्यादा द्रव्य लेते हो? कहते द्रव्य तो एक फूटी कौड़ी नहीं लेते हम, लेकिन 5-7 कभी मन पड़े तो 10 सिर खा लेते हैं जरूर। और हमारा इतना सारा खाना है ना, वो कोई सहन नहीं करता, उसकी भरपाई नहीं करता, इसलिए हमको हाथ जोड़ देता है कि आपसे सेवा नहीं करानी, हम खुद ही कर लेंगे सेवा। इसलिए हम पैसा तो एक ढेला नहीं लेंगे, लेकिन खाएंगे जी भरकर। अगर आपको उचित हो तो बताओ। और हमारे खाने पीने के ऊपर टोका टकी नहीं करने की कभी, और हम बाजार का नहीं खाते, हम खाएंगे आप ही के घर में, आपकी धर्मपत्नी जो पकाएगी वही खाएंगे। हाँ बाकी लोगों के लिए हम सब पका देंगे, सब सेवा कर देंगे, हमारा भोजन हम नहीं पकाएंगे, हमारा भोजन आपको पका के देना पड़ेगा। त्रिलोचन जी ने बड़ा विचार किया कि बात तो ठीक ही है, आपत्ति क्या है, अनेक संत खाते उसमें एक ये खा लेगा, क्या फर्क पड़ता है, और वैसे अनेक संतों के लिए बनाना है, इससे अच्छा ये इसके लिए तो बना ही सकते हैं, क्या आपत्ति है। धर्म पत्नी को बुलाए, देखो बहुत अच्छा नौकर मिला है, तूने टाने नहीं मारने इसको, ये जो बोले वैसा करने का। एक तो नौकर मिलता नहीं, और उसमें भी एक ऐसा मिला है जो संतों के हृदय को जानता है और सेवा करता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, इसलिए तुम्हारा भी काम आसान हो जाएगा। तूने बस इसकी सेवा करनी है जी भर के, जो मांगे वैसा देना है, उसको खुश करना है। प्रश्न खड़ा हुआ, भगवान ने इतने सारे खाने का प्रस्ताव क्यों रख दिया? कहते जिसके वहां रहते वो खिलाएगा तो सही, तो खाना तो वैसे भी भगवान के एक अधिकार में था। दूसरा ये था, त्रिलोचन जी के वहां रह के मैं साधु की सेवा करूंगा, और अगर कुछ नहीं लूंगा तो जो भक्त लोग हैं वो ऋणी बन जाएंगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं भी बदले में इतना खा लूं ताकि भक्तों को कोई ऋण चढ़े नहीं कभी जीवन में। इसलिए त्रिलोचन जी के माथे पर कोई ऋणी नहीं आए, इसलिए मैं त्रिलोचन जी के घर में अपना व्यवहार खा पी के पूरा कर लेता हूं। इसलिए भगवान ने खाने का इतना बड़ा प्रस्ताव रख लिया, और त्रिलोचन जी ने इस प्रस्ताव को मान्य भी कर लिया, आपका प्रस्ताव स्वीकार्य है, चलेगा। सबसे पहले तो क्या किया उन्होंने, उस अंतर्यामी जो स्वयं भगवान थे, जो तो सबके हृदय की जानते थे, नौकर के रूप में आए हैं, अभी अंतर्यामी को त्रिलोचन जी ने खुद अपने हाथों से घिस घिस के नहलाया, और उसको नया कंबल कपड़े और जूते दिलाए। प्रायः नौकरों को तो कोई कहते पुराना देता है, त्रिलोचन जी ने सोचा कि इतने साधुओं की सेवा करने की हामी भर रहा है, हाँ तो ये भी तो एक साधु जैसा ही हुआ, फिर तो इसको क्यों ना दे, फिर उसको भी उत्तम पदार्थ दिए, और कहा तुमको भी यहां जैसा रहना है, जो बस मेरी तो एकमात्र इच्छा है साधुओं की सेवा बढ़िया होनी चाहिए। कहते उसकी आप चिंता मत करो, भूल जाओ अभी, आप अभी ये तो परमानेंट सतर्क खड़े पग रहे अंतर्यामी, 24 घंटे में जब भी साधु आए ना ये तैयार, और जो भी साधु आए जिस प्रकार की इच्छा करे ना झट में पूरी करे। कोई साधु आए लगे के थके आ रहा है, तुरंत बिठाए, गर्म पानी से पैर धोए, मल मल के तेल मालिश करे, पैर दबाए, हाँ उनके लिए रुचि के अनुरूप भोजन बना के दे, तेल मालिश करे शरीर में भी, आवश्यक पदार्थ हो तो कोई लाके भी दे उनको, कुछ उनको कम पड़ता हो तो। कोई दूसरा साधु है उनको कुछ कष्ट हो रहा है, रोग हुआ है, तो उसकी उपचार करे, उनको काढ़ा बना के दे। जैसा जैसा साधु है, जो जो उसकी भावना हो ना, वो भावना बस देखे पहचाने और वैसे ही करे। कोई साधु अपने ठाकुर जी को लेकर आए तो अगर जान जाए कि ठाकुर जी के भोग लगाने की इनके हृदय में इच्छा है, तो सामने से पूछ ले, क्या ठाकुर जी को कभी रबड़ी नहीं खिलाते? वो कहते भाई खिलाने की तो खूब इच्छा थी, लेकिन रबड़ी लाए कहाँ से? अरे हम लाते हैं रबड़ी, आप बैठिए यहाँ पर। तो ठाकुर जी के लिए रबड़ी बना के ले आए और कहते लो खिलाओ अपने ठाकुर जी को रबड़ी, हैं? और वो भी प्रसन्न हो जाए, भाई तू कैसे जान गया? बस कहते ये हमारा खानदानी काम है, ये हम बरसों का हमारा अनुभव है इसमें, इसलिए हम सब समझ जाते हैं। जो भी साधु आए ना, बस अंतर्यामी अंतर्यामी नाम, जिसके भी मुख से पूरे घर में बस दिन भर अंतर्यामी अंतर्यामी, ये कर अंतर्यामी ले आ। हाँ त्रिलोचन जी भी हमेशा अंतर्यामी, वो जूते वहाँ ठीक से लगा देना अंतर्यामी, ये आटा दाल चावल आया उसको लगा देना अंतर्यामी, भोजन पका देना अंतर्यामी, बाजार से ये सामान ले आना, बस दिन भर में जब देखो तब अंतर्यामी अंतर्यामी चलता रहे। जो जो साधु सेवा का लाभ लेके जाए ना, वो भी दूसरों को बाहर जाके कहे भाई त्रिलोचन जी के वहां जाना अगर जाना हो तो, क्या संत सेवी व्यक्ति और उनका नौकर हा हा अंतर्यामी, बस आपको बोलना नहीं जाके बैठ जाना, बाकी उसको सब समझ में आ जाएगा। अब इतना नाम अंतर्यामी अंतर्यामी होगा, त्रिलोचन जी महाराज तो भगवान से रोज कहते प्रभु क्या क्या कृपा की आपने मेरे ऊपर, हाँ अंतर्यामी को भेजा है। त्रिलोचन जी महाराज भी खुद अंतर्यामी के प्रति ऐसे भाव अवस्था में हो गए, वो भी अपने आप को अंतर्यामी से इतना आसक्त कर बैठे कि अंतर्यामी के बगैर त्रिलोचन जी को भी अच्छा नहीं लगता। हाँ है तो उनके घर में नौकर के रूप में, लेकिन वो भी नौकर जैसा नहीं मानते, वो भी साधु जैसा ही मानते हैं अभी उनको। और जब अंतर्यामी भोजन करने के लिए बैठे तब की लीला भी बड़ी अद्भुत। रसोई में अंतर्या त्रिलोचन जी की धर्म पत्नी खूब सारा आटा लगाए, अनेक अनेक व्यंजन बनाए और त्रिलोचन जी को बिठाए, अंतर्यामी जी को बिठाए और एक 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 करके देती जाए। 13 महीने अंतर्यामी रहे थे, एक दिन भी भोजन करते हुए उन्होंने ना नहीं बोली, बस हो गया, एक दिन भी ना नहीं बोली। वो राह देखे के अभी और भी लगेगा, रोज के रोज जितना सामान है वो जब तक पूरा ना हो जाए तब तक अंतर्यामी अपना भोजन चालू रखे, वो बंद ना करे। जब यहाँ पूरा चूल्हा चौका खाली हो जाए हैं, तब अंतर्यामी जी का भोजन लीला पूरा हो जाए। तो ये जो बहन थी बेचारी, इतनी रोटियां पकाती थी, आटा लगाती थी, चक्की भी पीसती थी, सब करती थी, उसको तो कभी फुर्सत ही नहीं मिलती थी अंतर्यामी के अलावा दूसरा काम करने की, लेकिन बाकी के सारे काम अंतर्यामी कर लेता था। लेकिन ये भी कोई कम काम नहीं करती थी, भगवान का पेट भरना कैसे भरे। बड़ी मुश्किल से एक दिन थोड़ा मौका मिला था तो पड़ोस में कहीं गई होगी, बड़े दिनों के बाद पड़ोस में गई थी तो पड़ोसन थी, उसने कहा बहन तू तो बड़ी दुबली पतली हो गई, कुछ बीमार है क्या, ठीक से खाती नहीं क्या? अब स्त्रियों की आदत होती है या कुएं पे पानी भरते समय मिल जाए या कहीं घर के बाहर मिल जाए गैलरी में बैठे बैठे, तो बस बातें चल पड़ती है। कहती बहन क्या बताओ, बाकी तो सब ठीक है, खूब साधु आते सेवा भी होते सब ठीक है, लेकिन एक बड़ी समस्या। कहते क्या? वो हमारा नौकर अंतर्यामी इतना भुखड़ इतना खाता है बहन, उसका तो पेट भरते भरते ही मैं तो थक गई, मेरा तो जीवन ही उसी के पीछे लग गया है। अब नाम भी था अंतर्यामी, वो बातें कर रही थी पड़ोस के घर में, अंतर्यामी को यहां पता चल गया, हमारे खाने पीने को टोक दिया। हमने पहले ही कही थी हमारे खाने पीने को नहीं टोकना, टोक दिया कहते, वहीं से सीधा अप्रकट चले गए। अनेक साधु आए, व्यवस्था करनी है, त्रिलोचन जी अंतर्यामी को ढूंढ रहे, धर्मपत्नी को पूछ रहे, देखा अंतर्यामी को दिख नहीं रहा है, कहते नहीं पता, बाहर गए बाजार में गए इधर उधर ढूंढ रहे अंतर्यामी नहीं मिल रहा है, त्रिलोचन जी का जो दर्द है ना बढ़ता जा रहा है, अंतर्यामी नहीं मिला कहाँ चला गया, इतने साधु की सेवा कैसे होगी। अब त्रिलोचन जी अधीर होते जा रहे हैं, बार बार अधीर होते जा रहे हैं, आंखों में से आंसू आना शुरू हो गया है, त्रिलोचन जी रो रहे गली गली में रो रहे, अंतर्यामी कहाँ चला गया, अंतर्यामी कहाँ चला गया। घर पे आए, धर्मपत्नी से पूछा तू बता तूने टोका था क्या? कहते बिल्कुल नहीं टोका। मेरी सौगंध खा के बोल तूने टोका था क्या? कहते मैंने टोका नहीं। तो क्यों चला गया? उसने एक ही शर्त रखी थी कि मुझे टोकोगे ना मेरे खाने को जब तो मैं चला जाऊंगा। हिम्मत करके घरवाली बोलती, मैंने उनको तो नहीं टोका था, लेकिन पड़ोस में मेरी सिर्फ ऐसी चर्चा मात्र हुई थी, बस इसी के कारण ये चला गया। तुम्हारे पेट में रहती क्यों नहीं कोई बात, अब करो साधु सेवा इतनी सारी। सब लोग दुखी हो गए। त्रिलोचन जी ने बोला कि जब तक अंतरिया में नहीं आएगा तब तक मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगा। 3 दिन बीत गए, अंतरिया त्रिलोचन जी ने कुछ खाया पिया नहीं, घर में बैठे दुखी हो गए, रो रहे मात्र बस अंतरिया में। भगवान ने आकाशवाणी की कि त्रिलोचन जी आप चिंता मत करो, मैं ही अंतर्यामी बनकर आया था, क्योंकि आपको आवश्यकता थी ना एक सेवक की, सेवा करने के लिए, और मैं भी रात देख के बैठा था कि सेवा कब मिले, मैं भी चाहता था, इसलिए मैंने मौका देख के आपके वहां पर आया। आप बड़ी अच्छी सेवा करते हो, तो मैं कुछ दिन आपके वहां रहा, 13 महीने भगवान रहे, लेकिन समय था, एक दिन तो मुझे निकलना था, लेकिन अगर तुमको ज्यादा कष्ट है तो मैं वापिस आ जाता हूं। बोलो आओ। अब त्रिलोचन जी का तो सर्वस्व जैसे लूट गया हो, जैसे जमीन ही खिसक गई हो। अरे रे 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 रे, साधु की सेवा कराते कराते मैंने तो अंतर्यामी को न जाने कितनी बार ऑर्डर दिए होंगे, स्वयं भगवान आप ही थे, मैंने तो आपको न जाने क्या कहा होगा, अंतर्यामी ले आ, ये ले आ, वो ले आ, ये कर वो कर, पैर दबा, मालिश कर, कितना कुछ कहा होगा। 13 महीने तक मैं आपको सिर्फ ऑर्डर देता रहा और आप 13 महीने से बस ऑर्डर का पालन ही करते रहे। अब त्रिलोचन जी का दुख तो अनंत गुना बढ़ गया, अब पश्चाताप का पार नहीं, इतना पश्चाताप कर रहे, मैंने भगवान से सेवा करवाई, मैंने भगवान से काम करवाया। फिर भगवान ने आकर आश्वासन दिया, तुमने ऐसा कुछ नहीं कराया, ये तो मेरी खुद की ही इच्छा थी, मैं खुद इच्छा कर रहा था कि मैं इस प्रकार से तुम्हारे वहां आऊं और सेवा करूं, क्योंकि मुझे भक्तों की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि भक्त लोग हमेशा मेरी सेवा में लगे रहते हैं, तो मैं भी इच्छा करता हूं कि मैं भी कभी ना कभी भक्तों की सेवा करता रहूं। लेकिन क्या होता है कि भक्त सेवा लेते नहीं, इसलिए मैं कोई ना कोई बहाना बना के भक्तों की सेवा करता हूं। इसलिए तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, जब तक हो तब तक साधुओं की सेवा जो बन पड़े हो करते रहो, और मुझे कोई दुख नहीं है किसी भी बात का, और तुम भी कोई दुख मत करो। हाँ, भगवान के सांत्वना दिलाने के बाद त्रिलोचन जी मुश्किल से शांत हुए। तो ऐसे ऐसे महान भक्त थे कि भक्त तो भगवान की सेवा करते हैं तो स्वाभाविक बात है, इसीलिए उनको भक्त कहते हैं। लेकिन ऐसे भी भक्त होते हैं क्या कि जिनके वहां भगवान आते हैं सेवा करने के लिए? और अगर ऐसे भक्त होते हैं तो फिर वो भक्त कितने महान हुए। और ऐसे भक्तों के प्रति कोई अगर अपनी बुद्धि लगाए, अपनी मति उनमें लगाए, उनसे प्रेम करे, उनकी सेवा करने का भाव व्यक्त करे हृदय में, तो फिर भक्ति दूर नहीं रह जाती, फिर भक्ति तो शीघ्र प्राप्त होती फिर उस जीव को। इसलिए भगवान भी कहते मेरा भक्त वो नहीं जो मेरी सेवा करता है, मेरा भक्त तो वो है जो मेरे भक्तों की सेवा करता है। इसलिए प्रथम भक्ति संतन कर संगा, रामायण के अंदर राम जी और सबरी जी के बीच में ये प्रसंग आता है जिसमें ये प्रश्न किया जाता है कि प्रभु ये भक्ति का सबसे प्रथम अवस्था क्या है, बताइए जरा। तो राम जी सबसे प्रथम अवस्था ये बताते हैं कि प्रथम भक्ति तो संतों के संग में, संतन कर संगा, उनकी सेवा उनके संग में करो, ये सबसे प्रथम अवस्था है। स्वयं राम जी खुद स्वीकार करते इस बात को। तो इसलिए वैष्णव की कृपा बड़ी आवश्यक होती है जीव के लिए। जितना हम अपने आप को शुद्ध करेंगे ना, उतना वैष्णव में भाव बढ़ता जाएगा, उतने वैष्णव सामान्य नहीं लगेंगे, फिर हमको दिव्य लगेंगे, उनकी सेवा करने में भाव आएगा। ऐसा नहीं लगेगा कि नाटक कर रहे, बार बार डिमांड करते हैं, हमारे जैसे मनुष्य रूप में प्रतीत नहीं होंगे, हमारे हृदय में एक भगवान जैसा भाव जागेगा उनके प्रति कि इनके लिए सब कुछ जायज है। यही वैष्णव की सेवा होती है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिलोचन जी महाराज की, श्री ज्ञानदेव जी महाराज की जय। तो आज का जो प्रसाद है, क्या नाम है उनका, जयमिन भाई साधु आए उपस्थित है यहाँ, हरे कृष्णा, धन्यवाद आपका। तो उन्होंने आज प्रसाद दिया है सबको, तो उनका धन्यवाद करते हैं हरे कृष्णा, और भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि